साहित्य और व्यक्तित्व। साहित्य का उसके रचयिता के व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध होता है। इस तथ्य को प्रायः स्वीकार किया जाता है, फिर भी इन दोनों के संबंध को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें सर्वप्रथम व्यक्तित्व का अर्थ निश्चित कर लेना चाहिए। व्यक्तित्व सामान्य अर्थ में व्यक्ति का भाववाचक रूप है, अतः यह व्यक्ति से संबंधित सभी विशेषताओं एवं गुण दोषों के लिए प्रयुक्त होता है। साहित्य के क्षेत्र में यह आंग्ल पर्सनैलिटी के पर्याय के रूप में प्रचलित है। अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के परसोना से मानी जाती है, जिसका मूल अर्थ था नाटक में लगाए जाने वाले नकली चेहरे, पर आगे चलकर इसका प्रयोग मूल पात्रों या अनुकारियों के अर्थ में होने लग गया। आधुनिक युग में पर्सनैलिटी के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से लेकर उसकी वेशभूषा तक की सभी प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है, किंतु साहित्य में साहित्यकार के शारीरिक रूप रंग या उसकी वेशभूषा का स्थान नगण्य होता है। हमें यह देखना है कि साहित्य के संदर्भ में व्यक्तित्व से क्या आशय है। इस प्रसंग में आधुनिक मनोविज्ञान से भी सहायता ली जा सकती है। मनोविज्ञान के आचार्यों ने व्यक्तित्व की परिभाषा एवं विवेचना अपने अपने ढंग से की है, जिससे कोई एक सामान्य निष्कर्ष उपलब्ध नहीं होता। यथा आचार्य मैकडूगल ने व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए लिखा है, उद्धरण चिन्ह, व्यक्ति की समस्त मानसिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों की पारस्परिक घनिष्ठ क्रिया प्रतिक्रियाओं की समन्वित इकाई व्यक्तित्व है। तो ऑगडन महोदय के विचार से व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक जीवन का प्रकाशन है। इसी प्रकार कैटल विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के विशेष व्यवहार को तथा कार्न ने व्यक्ति की समस्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को व्यक्तित्व माना है। इन मनोवैज्ञानिकों ने अंततः व्यक्ति की समस्त मानसिक प्रवृत्तियों को व्यक्तित्व के अंतर्गत ले लिया है, किंतु इससे शारीरिक पक्ष सर्वथा उपेक्षित हो गया है। हमारे विचार में व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति की सभी विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों का समावेश करते हुए उसे चार पक्षों के अंतर्गत विभक्त किया जा सकता है। 1. शारीरिक पक्ष, 2. बौद्धिक पक्ष, 3. भावात्मक पक्ष और 4. चारित्रिक एवं व्यवहारिक पक्ष। साहित्य का संबंध वैसे तो इन सभी पक्षों से न्यूनाधिक मात्रा में होता है, किंतु बौद्धिक एवं भावात्मक पक्ष से विशेष रूप में होता है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी बौद्धिक वृत्तियों एवं भावात्मक प्रवृत्तियों, जीवन दृष्टि, विचारधारा, भावनाओं, अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति करता है। अतः साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार के बौद्धिक एवं भावात्मक पक्षों के अध्ययन पर ही अधिक बल दिया जाता है। साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण। सामान्य व्यक्तियों की भांति साहित्यकार के व्यक्तित्व का भी निर्माण एकाएक नहीं होता, अपितु वह अनेक तत्वों के आधार पर क्रमशः विकसित होता है। इन तत्वों में से 3 तत्व प्रमुख हैं, वंश परंपरा, वातावरण यानी परिस्थितियां और द्वंद्व। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व मूलतः उसकी वंश परंपरा, उसके माता पिता एवं उसके पूर्वजों के व्यक्तित्व का मिश्रित अंश होता है। अतः उसके रक्त के प्रत्येक कण में और उसके मस्तिष्क के प्रत्येक अणु में किसी न किसी मात्रा में उसके पूर्वजों का प्रभाव सदा विद्यमान रहता है, किंतु इस प्रभाव की मात्रा वातावरण या परिस्थितियों के अनुसार सदा घटती बढ़ती रहती है। व्यक्ति को जैसा पारिवारिक, सामाजिक, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय वातावरण तथा तत्संबंधी परिस्थितियों का संपर्क प्राप्त होता है, उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व ढल जाता है। पर इसका यह तात्पर्य भी नहीं कि वह वंश परंपरा के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वस्तुतः वंश परंपरा से प्राप्त तत्व वातावरण के अनुसार नया रूप ग्रहण करते हुए भी मूलतः वे अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे एक पीतल के टुकड़े को आप थाली, लोटा, गिलास, चम्मच आदि में से चाहे जो रूप दे दें, फिर भी पीतल पीतल ही रहता है। उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी आंतरिक रूप में परंपरा के शाश्वत तत्वों से अनुस्यूत रहता है, बाह्य रूप से भले ही उसमें कितना अंतर क्यों न आ जाए। परंपरा और वातावरण के अतिरिक्त तीसरा तत्व द्वंद्व है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण व विकास में योग देता है। व्यक्ति को जैसी परिस्थितियों से द्वंद्व करना पड़ता है, उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व अपनी दिशा या मार्ग खोज लेता है। अस्तु, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी पूर्व परंपरा, उसके वातावरण एवं उसके मानसिक एवं बाह्य द्वंद्व की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है, तथा यह बात साहित्यकारों पर भी सर्वांशतः लागू होती है। ऐसी स्थिति में साहित्य में भी साहित्यकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का अर्थ है उसकी पूर्व परंपराओं, वातावरण एवं द्वंद्व की क्रिया प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति। साहित्य के प्रसंग में परंपरा शब्द का अर्थ और अधिक व्यापक रूप में लेते हुए उसके अंतर्गत न केवल साहित्यकार की पूर्व वंश परंपरा को अपितु उसे प्रभावित करने वाली पूर्ववर्ती सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परंपराओं को ही समाविष्ट किया जा सकता है। साहित्य में व्यक्तित्व का प्रतिफलन। साहित्य के चार तत्व माने जाते हैं, विचार, भाव, कल्पना और शैली। साहित्यकार का व्यक्तित्व इन चारों ही तत्वों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। सबसे पूर्व विचार को लीजिए। साहित्यकार जिस सामग्री से अपनी रचना का स्थूल ढांचा और उसकी विषय वस्तु का संगठन करता है, वह बहुत कुछ उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, पौराणिक या सामान्य ज्ञान पर आश्रित होता है, जिसे हम विचार का एक रूप मान सकते हैं। इसके अनंतर वह विभिन्न घटनाओं के आयोजन व विभिन्न पात्रों के चित्रण एवं उनके वार्तालाप के रूप में जिस दृष्टि एवं सामग्री का उपयोग करता है, वह भी उसके बौद्धिक पक्ष से संबद्ध होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में वह अपनी जीवन दृष्टि, सामाजिक विचारधारा, राजनीतिक मान्यता, दार्शनिक या धार्मिक आस्था अनास्था की अभिव्यक्ति यत्र तत्र करता है तथा कहीं किसी विचारधारा का समर्थन एवं कहीं किसी का खंडन करता है। इन सबके पीछे उसके व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष, उसका अपना दृष्टिकोण, ज्ञान, अनुभव एवं चिंतन ही छिपा रहता है तथा इस प्रकार साहित्य के समस्त बौद्धिक तत्व रचयिता के बौद्धिक पक्ष की अभिव्यक्ति के सूचक सिद्ध होते हैं। साहित्यकार चाहे किसी भी पात्र की भावनाओं एवं अनुभूतियों का चित्रण एवं अभिव्यंजन करे, उनमें भी उसके निजी व्यक्तित्व की छाप विद्यमान रहती है। इतना ही नहीं, वह जिन भावनाओं को अपने साहित्य में प्रमुखता देता है, वे वस्तुतः उसके व्यक्तित्व एवं जीवन की ही प्रमुख भावनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, तुलसीदास के साहित्य में भक्ति की भावना का, बिहारी के काव्य में प्रणय भावना का, मैथिली शरण के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना का, अथवा नए कवियों में निराशा की प्रवृत्ति का प्रमुख होना इस बात का परिचायक है कि इनके व्यक्तित्व में इन्हीं की प्रमुखता है। एक ही भावना को अनेक कवि व्यक्त करते हैं, पर फिर भी उसमें उनके व्यक्तित्व के भेद के अनुसार अंतर रहता है। जायसी, बिहारी, प्रसाद आदि कवियों ने प्रणय भावना का अंकन अपने अपने काव्य में किया है, फिर भी इन सब में प्रणय का स्वरूप एक जैसा नहीं मिलता। जायसी के प्रेम में औदात्य अधिक है, बिहारी में कामुकता एवं रसिकता की सघनता है, तो प्रसाद में भावना की कोमलता और स्निग्धता अधिक है। अस्तु, कवि की भावाभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में उसके व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष, उसकी सहज प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों, भावनाओं, अनुभूतियों आदि के समन्वित रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह दूसरी बात है कि कई बार उसके अभिव्यक्ति में स्वानुभूतियों के स्थान पर आरोपित या दूसरों से उधार ली हुई अनुभूतियां ही व्यक्त हो जाती हैं, पर उस स्थिति में भी इससे उसकी वैयक्तिक रुचि एवं प्रवृत्ति की दिशा का न्यूनाधिक परिचय अवश्य प्राप्त होता है। विचार और भाव की ही भांति कल्पना का भी साहित्यकार के व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध होता है। यह ठीक है कि कल्पना का तथ्यों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, अतः उसका कवि के व्यक्तित्व से भी घनिष्ठ संबंध नहीं होता, पर फिर भी सही व्यक्ति समान परिस्थितियों में एक जैसी कल्पनाएं नहीं करते। इसका कारण यह है कि कल्पनाएं व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, उसके अनुभवों एवं मानसिक बिंबों तथा उसकी भावी आकांक्षाओं पर निर्भर होती हैं। अतः व्यक्तियों की कल्पनाओं में पारस्परिक अंतर आ जाना स्वाभाविक है। अस्तु, साहित्यिक वृत्तियों में प्रयुक्त कल्पना अप्रत्यक्ष रूप में कृतिकार के ही मूल प्रवृत्तियों, अनुभवों एवं उसकी आकांक्षाओं की द्योतक होती है। साहित्य के चौथे तत्व शैली के साथ तो व्यक्तित्व का और भी घनिष्ठ संबंध है। पश्चिम में तो अनेक विद्वानों ने साहित्यकार की शैली को ही उसका व्यक्तित्व घोषित किया है। गेटे के विचार से लेखक की शैली उसके मस्तिष्क की सच्ची अनुकृति है, तो चेस्टरफील्ड ने शैली को उसके विचारों की पोषक माना है। वफन महोदय ने शैली को उसकी प्रकृति का अंग बताया है, तो मिडल्टन मरी महोदय ने उसे लेखक के भावात्मक दृष्टिकोण पर आधारित स्वीकार किया है। इधर 20वीं सदी के कुछ चिंतकों ने शैली और व्यक्तित्व के संबंध को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक जुंग ने व्यक्तित्व के मुख्यतः दो भेद किए हैं, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। इनके भी चार चार अवांतर भेद और किए हैं, एक चिंतन प्रधान, दो अनुभूति प्रधान, तीन संवेदना प्रधान और चार सहजानुभूति प्रधान। इस प्रकार व्यक्तित्व के कुल आठ भेद हो जाते हैं, जिनके आधार पर अंग्रेजी विद्वान हर्बर्ट रीड ने अपने ग्रंथ इंग्लिश प्रोज स्टाइल में साहित्य को रूपों और शैली के भेदों को आठ वर्गों में विभक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि किस प्रकार साहित्य के रूप विधान एवं शैलीगत गुणों में साहित्यकार का व्यक्तित्व अनुस्यूत रहता है। इसी प्रकार F.L. ल्यूकस ने भी अपने शैली विषय ग्रंथ स्टाइल में प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व स्वभाव चरित्र एवं व्यवहार होगा वैसा ही रूप उसकी शैली का होगा। जो व्यक्ति अशिष्ट एवं चिड़चिड़े होते हैं उनकी शैली में भी वैसा ही रूखापन या चिड़चिड़ापन होगा, जबकि सहृदय उदार निष्कपट एवं विनोदी स्वभाव के व्यक्तियों की शैली में सरलता स्पष्टता एवं रोचकता होगी। वस्तुतः शैली के विभिन्न गुण दोष तथा उसके विभिन्न प्रवृत्तियाँ मूलतः साहित्यकार के व्यक्तित्व के ही विभिन्न पक्षों को सूचित करती हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। इतना अवश्य है कि कई बार हम व्यक्ति के बाह्य रूप को जैसा देखते हैं वैसा ही उसका आंतरिक रूप नहीं होता, यथा बाहर से वह सरल और उदार दिखाई देता हुआ भी भीतर से कुटिल एवं स्वार्थी हो सकता है। ऐसी स्थिति में साहित्य को उसके बाह्य व्यक्तित्व की अपेक्षा आंतरिक व्यक्तित्व से संबद्ध मानना उचित होगा। सच तो यह है कि व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व लोक व्यवहार की अपेक्षा उसकी साहित्यिक रचनाओं में भी अधिक स्पष्टता से व्यक्त होता है। अतः साहित्य में व्यक्त व्यक्तित्व को ही व्यक्ति के वास्तविक रूप का प्रतिनिधि मानना अधिक संगत होगा। हो सकता है कोई साहित्यकार जानबूझकर अपने वास्तविक व्यक्तित्व को छिपाता हुआ अपनी रचनाओं में काल्पनिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रयास करे, किंतु उस स्थिति में उसका साहित्य आत्मानुभूति से शून्य तथा काल्पनिकता एवं कृत्रिमता के भार से युक्त हो जाएगा। ऐसे साहित्य को सच्चे साहित्य के अंतर्गत स्थान नहीं दिया जा सकता। अतः यह बात प्रत्येक रचना पर लागू होती है कि यदि वह सचमुच में साहित्यिक है तो उसमें रचयिता के व्यक्तित्व को ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्ति अवश्य होगी। इस प्रकार साहित्य और साहित्यकार के व्यक्तित्व में घनिष्ठ संबंध की स्थापना सिद्ध होती है। व्यक्तिवादी आंदोलन और साहित्य। साहित्य के प्रारंभिक विवेचकों ने प्रायः साहित्यकार के व्यक्तित्व की उपेक्षा की है। प्लेटो और अरस्तु ने कला और साहित्य को प्रकृति या भौतिक जगत की अनुकृति मानते हुए कलाकार एवं साहित्यकार के व्यक्तित्व को गौण कर दिया था, पर पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में कदाचित लोंजाइनस पहले चिंतक थे जिन्होंने साहित्य के पीछे साहित्यकार के व्यक्तित्व को देखने का प्रयास किया। वे साहित्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व या गुण औदात्त्य को तथा औदात्त्य का मूल स्रोत साहित्यकार के व्यक्तित्व को मानते थे। उनके शब्दों में साहित्यकार के आत्मतत्व की महानता का प्रतिबिंब ही साहित्य का औदात्त्य है। सच्चा वाग् वैदग्ध उन्हीं में पाया जा सकता है जिनकी चेतना व्यापक और उदार हो। जो लोग जीवन भर शुद्र उद्देश्यों और संकीर्ण स्वार्थों के पीछे पड़े रहते हैं वे मानवता के लिए स्थायी महत्व की रचना नहीं दे पाते। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिनके मस्तिष्क महान विचारों से परिपूर्ण होते हैं उन्हीं की वाणी से उदात्त शब्द झंकृत होते हैं। इस प्रकार लोंजाइनस ने साहित्यकार के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से उसकी रचना का घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए व्यक्तिपरक विचारधारा का प्रवर्तन किया, किंतु साथ ही उन्होंने वस्तु का ही महत्व न्यून नहीं किया। लोंजाइनस के उपर्युक्त मत के बावजूद प्राचीन एवं मध्य युगों में साहित्यकार के व्यक्तित्व को अपेक्षित महत्व प्राप्त न हो सका। इसका मूल कारण यह है कि इन युगों में जनसाधारण की अपेक्षा देवी देवताओं एवं राजा महाराजाओं को सामान्य जीवन वृत्त एवं स्वाभाविक घटनाओं की अपेक्षा अलौकिक एवं आश्चर्यजनक वृत्तांत को और व्यक्ति के व्यक्तित्व की अपेक्षा सामाजिक जीवन को अधिक महत्व प्राप्त था। ऐसे स्थिति में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का अविकसित रह जाना स्वाभाविक था। आधुनिक युग में प्रजातंत्रीय विचारों के उदय के साथ साथ व्यक्ति स्वातंत्र की भावना का विकास हुआ। 17वीं-18वीं शती के अनेक राजनीतिक चिंतकों ने प्रजातंत्रीय विचारों का प्रतिपादन किया, जिनमें मॉन्टेस्क्यू 1679 से 1755, वाल्टेयर 1694 से 1778, रूसो 1712 से 1778 का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन लेखकों ने सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, राजा और प्रजा के व्यक्तित्व में मूलतः कोई अंतर नहीं है। यह धारणा गलत है कि राजा किसी दैवी शक्ति या विशेष प्राकृतिक अधिकार से संपन्न होता है। स्वतंत्रता एवं समानता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इन विचारों के प्रचार के फलस्वरूप इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में अनेक राजनीतिक क्रांतियां हुई जिनसे प्रजातंत्रीय शासन पद्धतियों की स्थापना हुई। आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांतियां एवं पूंजीवाद के विकास ने भी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में योग दिया। मनोविज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में भी व्यक्तिवादी विचारधाराओं की स्थापना हुई। फ्रायड, एडलर, जंग प्रवृत्ति मनोविश्लेषकों ने मानसिक प्रवृत्तियों का संबंध व्यक्ति की दमित वासनाओं, कुंठाओं, हीन भावना आदि से स्थापित करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्तिवाद का पोषण किया। दर्शन के क्षेत्र में अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद के चरम रूप को प्रस्तुत करता है। वह समाज एवं राष्ट्र के सही परंपरागत नियमों एवं पूर्व धारणाओं तथा सिद्धांतों को व्यक्ति के लिए अनावश्यक एवं आरोपित मानता है। व्यक्ति का अस्तित्व प्रमुख है, उसकी व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत एवं नियम गौण हैं। अस्तित्ववाद की इस धारणा ने व्यक्तिवाद को एक अतिवाद की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है, जहां वह सभी सामाजिक मर्यादाओं, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय परंपराओं से विरक्त होकर उच्छृंखल, विलासिता एवं सीमित अहम में केंद्रित हो जाता है। यह स्थिति सचमुच ही व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक है। उपर्युक्त राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक प्रवृत्तियों का कला और साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है। कला के क्षेत्र में प्रारंभ में स्वच्छंदतावाद एवं अभिव्यंजनावाद की प्रतिष्ठा हुई, जिन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में किसी इतर महापुरुष की गाथाओं के वर्णन की अपेक्षा वैयक्तिक अनुभूतियों की सहज व्यंजना को श्रेयस्कर घोषित किया। जहाँ इससे पूर्व कवि या कलाकार किसी सामाजिक स्थिति का चित्रण समाज की दृष्टि से करता था, वहाँ अब वह अपनी दृष्टि से समाज की व्याख्या प्रस्तुत करने लगा। वस्तुतः स्वच्छंदतावादी काव्य चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का, वह मूलतः व्यक्ति की भावनाओं को वैयक्तिक शैली में व्यक्त करता है। वस्तु की दृष्टि से वह व्यक्तिवाद है तो शैली की दृष्टि से अभिव्यक्तिवाद। स्वच्छंदतावादी काव्य में व्यक्तिवाद अपने स्वस्थ एवं संतुलित रूप में ही है, अतः उसकी बात समाज की समझ में आती है, उसकी अनुभूतियों एवं प्रवृत्तियों के साथ सामाजिक सहानुभूति भी स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि उसका साधारणीकरण हो जाता है। पर आगे चलकर 19वीं शती के प्रतीकवादियों एवं 20वीं शती के बिंबवादियों, दादावादियों एवं अति यथार्थवादियों कलाकारों ने व्यक्तिवाद को उनकी चरम अधोगति तक पहुंचा दिया, जहां व्यक्ति स्वातंत्र उच्छृंखलता का पर्याय बन गया। इनकी कथ्य वस्तु अस्वाभाविक एवं अशोभनीय होती है तो कथन शैली अस्पष्ट एवं विचित्र। अतः इन आंदोलनों के उन्नायकों ने सिद्ध कर दिया कि कोई वस्तु अपने अतिवादी रूप में विकृत हो जाती है, व्यक्तिवाद भी आज अपने विकृत रूप में दृष्टिगोचर होता है। उपर्युक्त सारी चर्चा पाश्चात्य कला और साहित्य को ध्यान में रखकर ही की गई है। इस संबंध में हिंदी साहित्य की चर्चा अलग से करना अनावश्यक है। हिंदी का साहित्यकार अब पाश्चात्य कलाकार का ही अनुयायी एवं अनुकर्ता बन गया है। जिस प्रकार वहाँ क्रमशः स्वच्छंदतावाद के बाद प्रतीक एवं बिंबों के प्रयोग को लेकर प्रयोगवाद एवं नई कविता न्यू वर्स का आविर्भाव हुआ है, लगभग उसी प्रकार हिंदी में क्षयवाद के बाद प्रयोगवाद, नई कविता आदि का आगमन हुआ है। फलतः पाश्चात्य साहित्य की सही व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का अंधानुसरण स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में देखा जा सकता है। सन 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, किंतु आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से अब भी हम पश्चिम के दास हैं। इसी का परिणाम है कि आज हमारे साहित्य में जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें शब्द हमारे हैं, किंतु उनकी आत्मा विदेशी है। कदाचित इसीलिए उनका अर्थ समझना कई बार कठिन हो जाता है। हम नहीं कहते कि हमें पश्चिम से कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए या हमें कूप मंडूक बना रहना चाहिए। अवश्य ही हमें खुले मस्तिष्क से सही बातों को सोच समझ कर ग्रहण करना चाहिए, पर अनुसरण करना और ग्रहण करना दो अलग अलग बातें हैं। दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश तथा कथित नए साहित्यकार ग्रहण एवं अनुसरण के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नदी को तैर कर उस पार पहुँचना और नदी में बहकर आगे बढ़ना एक ही बात है? वस्तुतः यही अंतर ग्रहण और अनुसरण में है। अस्तु, हमारे विचार में साहित्य में व्यक्तित्व का स्थान उसी सीमा तक है जहाँ तक वह रचना के समाजीकरण अथवा साधारणीकरण में बाधक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि साहित्य का मूल लक्ष्य व्यक्ति की धारणाओं, अनुभूतियों एवं कल्पनाओं का समाजीकरण, साधारणीकरण करना होता है। जहाँ साहित्यकार की वैयक्तिकता उसकी अनुभूतियों के समाजीकरण में बाधक सिद्ध होती है, वहाँ वह गुण के स्थान पर दोष बन जाती है। हलवे में बादाम उसके गुण व स्वाद की अभिवृत्ति के लिए डाले जाते हैं, किंतु यदि वे खाने वाले के गले में अटकने लग जाएं तो बेकार हैं। इसीलिए उन्हें काट कर डाला जाता है। सच्चा साहित्यकार भी अपनी वैयक्तिकता को पिघलाकर उसे सामाजिकृत रूप में ही प्रस्तुत करता है, अन्यथा उसमें और सामान्य वक्ता में कोई अंतर न रहेगा। वैयक्तिकता न्यूनाधिक मात्रा में सभी के पास है, पर उसे सामाजिकृत सभी नहीं कर पाते। सामान्य व्यक्ति और साहित्यकार में ही अंतर है। भारतीय आचार्यों ने साधारणीकरण एवं पाश्चात्य विद्वानों ने संप्रेषण की चर्चा करते हुए इसी सामाजिकरण या निर्वैयक्तिकरण की ओर संकेत किया है। वस्तुतः साहित्यकार काव्य के माध्यम से वैयक्तिकता को सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्वैयक्तिकता में परिणत करता है। इसीलिए उसका शोक केवल अपना शोक नहीं रह जाता, अपितु सारे समाज का शोक करुण रस बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वैयक्तिकता यदि साहित्य की आधार वस्तु है तो निर्वैयक्तिकता उसका लक्ष्य है। वैयक्तिकता को निर्वैयक्तिकता में परिणत करना ही कला है, काव्य है और जादू है जो सबको मुग्ध कर लेता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए साहित्य में व्यक्तित्व को एक सीमित एवं संतुलित रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व की अभिव्यंजना के नाम पर थोथे आत्म प्रदर्शन, छिछले अहम, मिथ्या अभिमान एवं निजी कुंठाओं को असाधारणीकृत रूप में प्रस्तुत करना साहित्य के मूल प्रकृति एवं प्रवृत्ति के प्रतिकूल है, अतः इससे बचना होगा। इस प्रकार साहित्य और व्यक्तित्व शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।